मोहतरम बुजुर्गों और भाइयों, ऐलान ये होता है कि दीन में कामयाबी है। ये कैसे मालूम हुआ कि दीन में कामयाबी है? ये ऐसे मालूम हुआ कि दीन जो है वो अल्लाह का होता है, अल्लाह का मुकर्रर किया हुआ होता है। इंसानों के लिए ज़िंदगी गुजारने का तरीक़ा जो अल्लाह की तरफ से मुकर्रर हो और जो आसमान से मुतय्यन करके भेजा गया हो वही के ज़रिए से और अपने रसूल पर उतारा गया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो अल्लाह का होता है। इसलिए दीन में कामयाबी अल्लाह की तरफ से मुकर्रर होती है और इसीलिए उस दीन में कामयाबी होगी जो अल्लाह की तरफ से मुकर्रर है, उसमें नहीं होगी जो लोग अपना खुद से बनाएंगे, और उसमें भी नहीं होगी जो अल्लाह की तरफ से मुकर्रर था लेकिन वो कैंसिल हो गया। जिस दीन को अल्लाह पाक ने खुद ही कैंसिल कर दिया हो उस दीन में अब कामयाबी कहाँ से मिलेगी, और जिस दीन को अल्लाह ने मुकर्रर ही नहीं किया, लोगों ने अपनी तरफ से घड़ लिया हो, उसमें कामयाबी कैसे मिलेगी? तो उस दीन में कामयाबी मिलेगी जिस दीन को अल्लाह ने मुकर्रर फरमाया है। और अल्लाह कौन होते हैं मुकर्रर करने वाले? अल्लाह ही सब कुछ होते हैं मुकर्रर करने वाले, क्योंकि अल्लाह पाक वो होता है जो खालिक है, जो मालिक है, जो रब है, जो हाकिम है, जिनका कंट्रोल है, जिनके हाथ में सब कुछ है। इस वजह से अल्लाह होते हैं मुकर्रर करने वाले, उनको राइट है, ये उनका हक है कि वो जिस चीज़ में चाहे कामयाबी को मुकर्रर करें। हम सब के सब मखलूक हैं, उनकी पूरी कायनात उनकी मखलूक है, अल्लाह खालिक है और पूरी कायनात उनकी मोहताज है। अल्लाह पाक गनी है, हम सब के सब फ़कीर हैं और वो दाता है। किसी इंसान को किसी मखलूक को जो मिला है वो अल्लाह की तरफ से मिला है। हमारे पास वजूद नहीं था, अल्लाह पाक ने वजूद अता फरमाया, हम देख नहीं सकते थे, हमें देखना बताया, हमें दिखाया और दिखा रहे हैं, हम सुन नहीं सकते थे, हम सुन रहे हैं, हम बोल नहीं सकते थे, हम बोल रहे हैं, हम चल फिरने की ताकत नहीं रख सकते थे, हमें चलाया फिराया, ताकत अता फरमाई, कुदरत अता फरमाई, हम जाहिल थे, हमें इल्म अता फरमाया, ये सब अल्लाह तबारक व तआला ने दिया है। और जिसने दिया है उसके कंट्रोल में हर वक्त है, वह जब चाहे ले लें, इसीलिए हमारी ज़िंदगी जब चाहे वो छीन सकते हैं, हमारी सेहत जब चाहे जब छीन सकते हैं, हमको दिया हुआ पैसा और कारोबार जब चाहे जब छीन सकते हैं, हमें दिए हुए बीवी बच्चे जब चाहे जब छीन सकते हैं, मकान दुकान सहूलतें उनके हाथ में हैं। तो पूरी की पूरी मखलूक मोहताज, हम भी मोहताज, और न सिर्फ ये कि हम इस वक्त मोहताज हैं, आइंदा भी हम मोहताज रहेंगे, और न सिर्फ ये कि हम अपने बारे में कुछ नहीं जानते थे, हमारे अपने फ्यूचर के बारे में भी कुछ नहीं जानते। तो अल्लाह ही ने पैदा भी किया है और अल्लाह ही ने हमारी ज़िंदगी का प्रोग्राम बनाया है, प्लान अल्लाह का चलेगा, हमारा नहीं चलेगा। तो अल्लाह का मंसूबा क्या है, अल्लाह का प्लान क्या है, वो भी अल्लाह के बताने से ही पता चलता है कि तुम यहाँ से कब्र में बरज़ख़ की ज़िंदगी में जाते हो, वहाँ से फिर तुम उठाए जाओगे, वहाँ से तुम हशर में लाए जाओगे, वहाँ से तुम्हारा हिसाब किताब होगा, वहाँ से तुम्हें जज किया जाएगा कि तुम्हारे आमाल दुनिया में किस तरह के थे, यकीन तुम्हारा किस तरह का था, तुम किस कैटेगरी के आदमी हो, और तुम्हें जन्नत में भेजा जाए या जहन्नम में भेजा जाए। जन्नत उनकी बनाई हुई है, जहन्नम उनकी बनाई हुई है, जिसको जन्नत में भेजना वो तय करे उसको कोई कैंसिल नहीं कर सकता, जिसको जहन्नम में भेजना तय करें उसको कोई कैंसिल नहीं कर सकता, अल्लाह के इरादे पर कोई गालिब नहीं आ सकता, और अल्लाह पाक जो फैसला फरमाए वही नाफिज होता है, अल्लाह को कोई आजिज़ नहीं कर सकता, अल्लाह का कोई मुकाबला नहीं कर सकता, अल्लाह का कोई शरीक नहीं है, कोई मसील नहीं है। अल्लाह ताला शानहु का मामला यह है कि वो जो निज़ाम चाहे बनाए, तो उन्होंने हमारी ज़िंदगी का निज़ाम बनाया, और हमारी ज़िंदगी की कामयाबी को अपने दीन के साथ में जोड़ा, इसलिए दीन में कामयाबी है। इस मज़मून को हम जितना सोचेंगे, जितना गौर फिक्र करेंगे, जितना मुज़ाकरा करेंगे, उतना अल्लाह पाक हम पर खोलेगा कि कामयाबी दीन में है। दूसरी बात यह होती है कि दीन जो है ना वो मेहनत से आता है। एक दीन की शक्ल सूरत होती है, एक दीन की हकीकत होती है। दीन की शक्ल सूरत देखा देखी भी इख्तियार की जा सकती है, दीन की हकीकत जो है ना वो देखा देखी नहीं होती, वो सीखनी होती है। जब इस्लाम फैल गया, मदीने में इस्लाम गालिब हो गया और जौक दर जौक मुख्तलिफ कबाइल इस्लाम में आना शुरू हो गए, तो बाज़ कबीले ऐसे भी थे जो मुसलमान होना नहीं चाहते थे और मुसलमान हुए भी नहीं थे, लेकिन सूरत हाल ऐसी थी कि वो इग्नोर नहीं कर सकते थे इस्लाम को। कौन लड़ेगा इनसे और कौन जिजिया देगा? और जज़ीरतुल अरब से बाहर कौन जाएगा? ये तीन चीज़ें कर दी गई थी कि वो जो जज़ीरतुल अरब है इससे बाहर घर को निकलना होगा, और उसके अलावा जो इससे बाहर जाएगा उसको अगर इस्लाम के बग़ैर रहना है तो जिजिया टैक्स देना होगा या फिर इस्लाम लाना होगा। तो सूरत हाल ऐसी थी कि उसको छोड़ के जा भी नहीं सकते थे, इतने पैसे भी नहीं थे कि दे सकें, जाके दूसरी जगह सेटल होना फिर पैसे भी देना। तो बाज़ ग्रुप ऐसे हुए जिन्होंने कहा कि भाई हम सरेंडर होते हैं, ठीक है सर आप जो बोले वो कर लेते हैं, आप जैसा बोले वैसा कर लेंगे। तो उन्होंने नमाज शुरू कर दी, रोज़ा शुरू कर दिया, लिबास वज़ाकता जो है ना वो इस्लाम के मुआफ़िक हो गई। वैसे तो इस्लाम की मुआफ़िक ही थी पहले से वज़ाकता, लिबास गैर मुस्लिमों का वज़ाकता भी पहले इस्लाम की मुआफ़िक ही था, क्योंकि वो वहाँ का कल्चर भी था, फिर मज़हब भी बन गया। वो मज़हब बनने की वजह से पाबंदी आ गई, उनका कल्चर होने की वजह से पाबंदी नहीं है, वो बाद में वो मज़हब बना पूरा। तो मौक़ों मौक़ों से बाज़ मरतबा उन्होंने ये किया कि साहब हम भी तो मुसलमान हो गए ना, हमारा भी तो लिहाज रखो, हम भी तो इस्लाम में आ गए ना, हमारा भी हिस्सा दो, हमारे साथ ये रियायत करो, हमारे साथ वो रियायत करो, ऐसा डिमांड शुरू किया उन्होंने। तो अल्लाह पाक ने कुरान पाक में ये बात फरमाई कि قالت الاعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا اسلمنا, देहातियों ने आके कहा कि हम ईमान ले आए हैं, आप ये फरमा दीजिए कि नहीं तुम ईमान नहीं लाए हैं, यूँ कहो कि हम इस्लाम ले आए हैं, यानी ज़ाहरी शोपुटअप में हम अपने आप को मुसलमान बता रहे हैं। वलम्मा यदखुल ईमानु फी कुलूबिकुम, और ईमान तुम्हारे दिलों में उतरा नहीं है। प्लस फिर ये फरमाया अल्लाह तबारक व तआला ने कि ये ज़ाहरी तौर पर तुम्हारा सरेंडर होना ये भी मेरा ही एहसान है। यमुन्नू नाले का नसलम कुल्ला तमन्नु अलैय इस्लामकुम, एहसान जताते हैं कि वो इस्लाम ले आए, उनको बताओ एहसान मत जताओ, तो मैंने तौफीक दी तो चलो पहले ज़ाहरी तौर पर ले आओ इनको, फिर अंदर भी उतर ही जाएगा, अंदर की मेहनत ये खुद ही कर लेंगे देखा देखी करके, फिर अल्लाह पाक अता फरमा देंगे। उनको देने वाले तो अल्लाह ही है, चाहे ज़ाहरी इस्लाम हो चाहे बातिन इस्लाम, चाहे ईमान की क़ुव्वत हो चाहे ज़ाहरी तौफीक हो, वो सब अल्लाह ही देते हैं। हमने नमाज़ पढ़ी तो अल्लाह की तौफीक से ही पढ़ी, हम जिक्र करते हैं अल्लाह की तौफीक से जिक्र करते हैं, हमने रोज़ा रखा अल्लाह की तौफीक से ही रोज़ा रखा, हम तस्बीह पढ़ेंगे तो अल्लाह की तौफीक से ही तस्बीह पढ़ेंगे, हम दीन की फ़िक्र के लिए बैठे हैं अल्लाह की तौफीक से ही बैठे हैं, हम दीन की बात कह रहे हैं अल्लाह की तौफीक से ही कह रहे हैं, और दीन की बात हम सुन रहे हैं अल्लाह की तौफीक से ही सुन रहे हैं। बगैर अल्लाह की तौफीक के कोई अमल नहीं हो सकता, ना ज़ाहिर का ना बातिन का। तो दीन जो है वो ज़िंदगी में मेहनत से आता है, तो हकीकत दीन वो जो है मेहनत चाहता है। हकीकत दीन में क्या चीज़ होती है? हकीकत दीन में ये होता है कि अल्लाह तबारक व तआला की ज़ात आली का यकीन दिल में उतर कर, उनकी अज़मत दिल में उतर कर, दिल भर जाना उनकी अज़मत से, दिल अल्लाह पाक की अज़मत से भर जाना, और अल्लाह के गैर की अज़मतें निकल जाना और मोहब्बतें निकल जाना, اور جس کی بھی محبت یا جس کا بھی لنک اور تعلق ہو وہ اللہ کے تھرو ہونا، حتیٰ کہ اللہ کے رسول سے بھی محبت اللہ کے تھرو ہے. احب اللہ تعالی لما انعمکم و احبونی لحبہ ایایا، اللہ سے محبت کرو اس واسطے کہ وہ تمہارے محسن ہیں، اور مجھ سے محبت کرو اس واسطے کہ اللہ مجھ سے محبت کرتا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلق بھی ہمارا اللہ کے تھرو، بیت اللہ سے بھی تعلق اللہ کے تھرو، کلام اللہ سے بھی تعلق اللہ کے تھرو، دینی سب دنیا سے تعلق اللہ کے تھرو، ماں باپ کے تعلق بھی، بیوی بچوں کا تعلق بھی، رشتہ داروں کا تعلق بھی، دوستوں کا تعلق بھی اللہ کے تھرو ہونے کا ہے. اسی وجہ سے جس میں اللہ ناراض ہو گیا وہ تعلق کٹ جائے گا آٹومیٹکلی، چاہے وہ ماں باپ کا ہو، اولاد کا ہو، دوستوں کا ہو، رشتہ داروں کا ہو، کسی کا بھی. اگر اللہ کی رضا نہیں ہے اس میں، اللہ کی مرضی کے خلاف والا سلسلہ ہے، لنک ہے، وہ کٹ جائیں گا. مطلب کانو آبا ہوں اور اخوان ہوں، چاہے ان کے ماں باپ ہوں چاہے ان کے بھائی ہوں. قرآن پاک میں صاف ہے یہ بات، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ شاید علماء یہ بھی بولتے ہیں شاید علماء وہ، ایسا نہیں ہے، ہو ہی نہیں سکتا. ایمان کی حقیقت کے خلاف ہو جاتا ہوں اور دین کی حقیقت کے خلاف ہو جاتا ہے. اللہ کی عظمت سے دل کا بھر جانا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے دل کا اللہ کے سامنے جھک جانا اور سرنڈر ہو جانا دلی اعتبار سے، آدمی کے اپنے جذبات کے اعتبار سے آدمی اللہ تبارک و تعالیٰ کے حوالے ہو جائے. اس کو کہتے ہیں ومن احسن الدین ممن اسلم وجہہ للہ، اچھا دین اس کا ہوتا ہے کہ جس کی ذات اللہ کے لیے حوالے ہو جاتی. ایک ہے ومن احسن قولا اور ایک ہے ومن احسن دینا، دو آیتیں ہیں قرآن پاک میں. ومن احسن قولا ممن دعا الى اللہ، اللہ کی طرف بلانا سب سے اچھا قول ہے. اور اچھا دین کیا ہوتا ہے؟ اچھا دین یہ ہے کہ اندر سے اللہ کی طرف ہو جانا. وجہن کی معنی ذات کے ہیں، آپ چہرہ نہیں ہے، کیونکہ اللہ پاک کی اللہ تعالیٰ کی طرف کوئی فزیکلی چہرہ نہیں کر سکتا. بیت اللہ کی طرف جو کرتے ہیں وہ اللہ کی طرف نہیں کرتے، بیت اللہ کی طرف کرتے ہیں. اللہ کی طرف جو چہرہ ہوتا ہے وہ تو اندر سے ہوتا ہے، اس کا کوئی رخ نہیں ہوتا، اللہ کسی رخ میں نہیں ہوتا. وہ جہاد، وہ محدد الجہاد ہے، وہ جہاد سے پاک ہے، نہ سیدھی طرف نہ بائیں طرف نہ پیچھے نہ سامنے نہ اوپر نہ نیچے. اللہ پاک جہاد اللہ پاک کو نہیں ہے. ایک غیر مسلم نے مسلمان عالم سے پوچھا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا رخ کدھر ہے بتاؤ، چہرہ کدھر ہے بتاؤ. تو انہوں نے ایک شمع منگائی، عالم صاحب نے شمع موم بتی، اس کے بعد میں اس کو جلایا، اس کے بعد اس سے پوچھا اس کا رخ کدھر ہے بتا، اس کا منہ کدھر ہے بتا. کہنے لگے اس کا منہ تو چاروں طرف ہے، اس کا تو مقرر نہیں کر سکتے. کہنے لگے ایک شمع کا مقرر نہیں کر سکتے، منہ تو اس کا کیسے مقرر کر سکتے؟ اللہ پاک کی ذات. تو وہ جو ذات اپنا چہرہ یا اپنی ذات کو متوجہ کرنے کا مطلب ہوتا ہے کہ دل سے تمام محبتیں، تمام عقیدتیں، تمام چاہتیں، تمام طرح کی فدائیت، جانی عبادت، مالی عبادت، جذباتی عبادت، خواہشات کو ختم کرنا، کسی کے لیے مر جانے کا جذبہ، فرما برداری کا جذبہ، کسی کے ماتحت ہو، یہ سارے کے سارے جو ہے نا وہ ایک ذات کی طرف ہونا، یہ ہے حقیقت دین. ومن احسن دینا ممن اسلم وجهه للہ وهو محسن، پھر اس میں احسان بھی ہونا. واتبع ملۃ ابراہیم، عجیب بات ہے، عجیب بات ہے، بہت ہی عجیب ہے. اور ابراہیم کی ملت کی اتباع کرنا، یہ ہے دین کی حقیقت. ابراہیم کی ملت کی اتباع کرنا، ملت ابراہیمی کی اتباع. ملت ابراہیم کیا تھا؟ انی وجہت وجهی للذی فطر السماوات، میں نے اپنا رخ اس کی طرف کیا جو آسمانوں اور زمینوں کا فاطر ہے، جو آسمانوں اور زمینوں کا پیدا کرنے والا ہے، ادھر میں نے اپنا منہ. اور منہ سے مراد وہی ذات ہے، دل ہے، دل کا رخ اللہ پاک کی طرف ہو جانا. اور دل میں اللہ کی عظمت، اللہ کے نبی کی عظمت، اور جتنی چیزیں ایمانیات کی ہیں ان کی حقیقت یہ اتر جانا. किताबों पर ईमान, रसूलों पर ईमान, तकदीर पर ईमान, फरिश्तों पर ईमान, तकदीर पर ईमान, आखिरत पर ईमान और मरने के बाद दोबारा उठाए जाने पर ईमान, जो बातें बताई गई हैं वो दिल से कबूल हो जाना, फिर उसके एतबार से दिल का बिल्कुल ताबे हो जाना, नरम पड़ जाना। और ये मेहनत चाहता है, ये चीज़, ये कैफियत, ये रुख जो है ना, ये मेहनत चाहता है। हजरत साहबा को अल्लाह पाक ने ये चीज़ पहले मरहमत फरमाई और फिर उसके बाद में अहकाम उनकी तरफ आए हैं, तरतीब ऐसी हुई है उनके साथ कुदरती तौर पर। कुदरती तौर पर ऐसा हुआ कि पहले उनको अल्लाह की तरफ बुलाया गया, अल्लाह तबारक व तआला की आज़मत दिल में बिठाई गई, अल्लाह की तरफ मुतवज्जे किया गया, वो अल्लाह की तरफ मुतवज्जे हो जाते थे तो फिर अहकाम और मसाइल तो बाद में, बहुत देर के बाद में आते थे। इसलिए हजरत साहबा से ये मनकूल है कि हमको ईमान पहले मिला है, इल्म बाद में मिला है, क्योंकि ईमान की हकीकत मिलने के बाद में जैसे जैसे अहकाम उनको मिलते जाते थे उसके खिलाफ की वो सोच ही नहीं सकते थे। अंदर के अंदर से जब आदमी किसी का हो चुका है उसके खिलाफ फिर नहीं सोच सकता, चाहे उसके बात फेवर में हो या ना हो, मशक्क़त की हो, आसानी की हो, मज़े की हो, कड़वी हो, मिट्टी हो, किसी चीज़ की सोच नहीं रहती उसकी। वो मेहनत चाहती है मेरे दोस्त, वो दो तरह की मेहनत होती है, एक मेहनत आदमी को करनी होती है अपने मकाम पर और एक मेहनत आदमी को करनी होती है अल्लाह के रास्ते में निकल कर खुरूज के ज़रिए से, क्योंकि निकलो अल्लाह के रास्ते में निकलो और ख़ुद भी सीखो और दूसरों को सीखने की तरगीब दो। दूसरों को हम नहीं सिखा सकते, उनको ये कह सकते हैं कि जैसे हम सीखने के लिए निकले आप भी सीखने के लिए निकलो, बगैर निकले के माहौल में नहीं होते, इस वजह से सीखा नहीं जाता। हम किसी को ना हिदायत देने जाते, नसीहत करने जाते, ना उनको सिखाने जाते। तबलीग वाला किसी को सिखाने नहीं जाता, तबलीग वाला ये कहने जाता है कि मैं निकला सीखने के लिए, तो तुझसे ये कह रहा हूँ कि तू भी निकल सीखने के लिए। और फिर निकलने वाले की जिम्मेदारी है कि निकल के सीखे मस्जिद में, मस्जिद वाले माहौल में, तालीम में, खिदमत में, दावत में, इबादत में सीखे, लगे अपने आप लगाए, दुआ भी करे, फिक्र भी करे, दावत भी दे उसकी, बोले भी उसको, सुने भी उसको, वो एक प्रोसेस है पूरा उसका, वो सीखेगा, दूसरे को भी तरगीब देने का, ताकि सारी इंसानियत दीन सीखने में और ताल्लुक़ में अल्लाह सीखने में और ईमान सीखने में अपना वक्त लगाए, जान लगाए, माल लगाए। ये तो मेरे दोस्तों एक मेहनत ये है। अल्लाह पाक ने इसमें सहूलत बहुत फरमा दी, हर जगह अवेलेबल कर दिया, थोड़ी देर के लिए हो या ज़्यादा देर के लिए हो आपके लिए आसानी फरमा दी, कम खर्चे के साथ हो, छोटे तो ज़्यादा खर्चे के साथ हो इसकी भी आसानी फरमा दी। फ़ायदा इतना ज़्यादा है, ऐसा माहौल, ऐसी नौयत उसकी बना दी है कि ये चीज़ सीखने के लिए पहले बरसों लग सकते थे, लगते थे, अब नहीं लग रहे। अगर एक आदमी चार महीने कंटिन्यू उसूल के साथ में लगा तो काफ़ी उसकी ज़िंदगी के अंदर तब्दीली आ जाती है, जज्बा उसका बनने में काफ़ी तब्दीली देखी जाती है, तजुर्बे में आया कि हज़ारों लाखों की ज़िंदगियों में तब्दीली आ गई। और कंटिन्यू करना भी पड़ता है उसको मेहनत को, लेकिन इब्तदाई तौर पर ट्रेन के पटरी पर सही रुख पर चलने के वास्ते जो ज़रूरी होता है मरहला, तकरीबन वो हासिल हो जाता है चार महीने में, अगर इखलास के साथ हो और सही उसूलों के साथ हो। आसानी है, फ़ायदा मंद है, फजाइल इसके लाजवाब है, तीन चीज़ें हैं इसकी और ज़रूरत इसकी है और अहमियत है इसकी। पूरी इंसानियत इसकी ज़रूरतमंद है, पूरे मुसलमान इसकी ज़रूरतमंद है, क्योंकि मुसलमान सब चीज़ों में लगा हुआ है, इसी में नहीं लगा हुआ है। जिसमें लगना था उसमें नहीं लगा, जिसमें लगने की इतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं थी उसमें लग गया। पूरी जान, पूरा माल, पूरी सलाहियतें, पूरी तवज्जो, पूरी सरफ हिम्मत उसकी ऐसी चीज़ में लग गई जिससे जो मकसद से हट कर हो। हालांकि उसमें भी लगना चाहिए था, लेकिन सरसरी तौर पर इसमें लगता, इसमें ज़्यादा अहमियत के साथ में लगता, इसलिए कि मुसलमान को अल्लाह तबारक व तआला ने उसकी अपनी ज़िम्मेदारी के साथ सारे आलम की ज़िम्मेदारी भी दी है, पूरी इंसानियत की ज़िम्मेदारी है, पूरी उम्मत की ज़िम्मेदारी है हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बरकत से। इसलिए मेरे दोस्तों अल्लाह के रास्ते में निकलना और निकल के दीन की मेहनत करना ताकि ये दीन की हकीकत मुझे नसीब हो और आपको भी नसीब हो, करने वालों को अल्लाह पाक अता फरमाते हैं, जो जितनी मेहनत करता है वो उतना पाता है, जो जितनी मेहनत करता है वो उतना पाता है। ये अपनी अपनी मेहनत है, अपना अपना फ़ायदा है। और मकामी मेहनत भी होती है, गश्तें होती हैं, तालीम होती है, मशवरे होते हैं, घर की तालीम भी होती है, ये सब उमूर जो होते हैं जो आप हजरात को हमसे ज़्यादा मालूम है और माशाल्लाह इसी दर्जे में आप हजरात करते भी रहते हैं, ये मेहनत भी चलते रहना, वो मेहनत भी चलते रहना, खुरूज होते रहना, इसीलिए इसकी फजीलत है। जो उस अमल का फ़ायदा ज़्यादा होता है वो अमल अल्लाह तबारक व ताला को महबूब ज़्यादा होता है, जो ज़्यादा महबूब होता है उसकी फजीलत ज़्यादा होती है। सवाब ज़्यादा क्यों है, इनाम ज़्यादा क्यों है, चूँकि उनको पसंद ज़्यादा है, वो पसंद उनको क्यों ज़्यादा है, नतीजा उसका वैसा रखा उन्होंने, बहुत अहम है, बहुत ज़रूरी है, बहुत फ़ायदा मंद है, इसलिए वो उनको पसंद है। तो ये अहम भी है, ये ज़रूरी भी है, ये फजीलत वाला भी है। अहम का मतलब ये होता है कि बाज़ मरतबा चीज़ मौकूफ़ होती है दूसरी चीज़, डिपेंड होती है दूसरी पर। तो दीनी जो ज़िंदगी है वो डिपेंड है इसके ऊपर, जैसे नमाज जो है ये डिपेंड है वज़ू के ऊपर, वज़ू नहीं है तो नमाज नहीं होती। तो वज़ू अहम हो गया, अफजल नहीं हुआ नमाज से, लेकिन अहम हो गया। ये नहीं बोल सकते कि साहब वज़ू के बगैर नमाज नहीं होती, लिहाजा मैं चार वज़ूआ कर लेता हूँ, पांच रकात नमाज पढ़ने के बजाय नहीं कर सकते, बैठे हुए हैं हॉस्पिटल के 10-20 वज़ू कर लेता हूँ, क्योंकि यही अहम है, यही नहीं रहा तो नमाज नहीं होती, नहीं है वैसा। अहम का मतलब यह है कि मौकूफ़ अलैह हो। दीन की ये जो मेहनत है, खुरूज जो है मेरे दोस्तों, ये अहम इस माना कर रहे कि इसके बगैर अपनी ज़ात में और दूसरों में दीन की अजमत और तलब नहीं आएगी। जब दीन की अजमत और तलब नहीं आएगी तो दीन के तकाजों को कहाँ से लेंगे, वो नमाज़ कहाँ से पढ़ेंगे, रोज़ा कहाँ से रखेंगे, ज़कात कहाँ से देंगे, सुन्नत पर कहाँ से अमल करेंगे, हलाल हराम की तमीज़ कहाँ से करेंगे। अहम यूँ है, ये मुकद्दम है, ये पहले है, ये और ज़रूरी कई को है, बेतलब हो गए इंसान, लोगों में तलब ही नहीं रही, चाहती नहीं रही आखिरत की, अल्लाह को खुश करने की, जन्नत को हासिल करने की, जहन्नम से बचने की, अजाब से उसके अजाब की अहमियत ही निकल गई। और फजीलत सारी कुरान और हदीस से भरी हुई है कि चूंकि ये ऐसी चीज़ है, इस वजह से अल्लाह पाक ने उम्मत मुस्लिमा के लिए एजाज़ की चीज़ भी बनाया और उम्मत को सवाब भी अता फरमाया। हर हर कदम पर इसका सवाब है, हर हर अमल पर, हर हर एक्शन पर, हर हर इन इसमें इसके इससे इससे लिंक होकर, इससे रिलेटेड होकर जो भी चीज़ है उस पर सवाब। क्यों, ये अल्लाह को पसंद बहुत ज़्यादा है, जो चीज़ उनको पसंद होती है उसका सवाब बहुत ज़्यादा होता है, ये उन्होंने सवाब इसका रखा है, इसलिए फजीलत बहुत ज़्यादा है इसकी। और इसकी जामियत है इसके अंदर कुछ, यानी एक ऐसी फजीलत का एक रूप ऐसा है कि इसके ज़रिए से जितना खैर वजूद में आएगा तुम्हारी मेहनत में, उसको पूरे खैर को शामिल करके उसका पूरा सवाब दिया जाए। आपने किसी को दावत दी, 10 मिनट लगे, उसके जहन में बात आ गई, उसने तौबा कर ली, वो ज़िंदगी भर नमाज़ पढ़ने लग गया, ज़िंदगी भर की नमाजें 10 मिनट के अंदर आ गई इसकी, ये ऐसी जामियत है। वो न सिर्फ नमाज़ें पढ़ने लगा और दूसरे नेक काम भी करने लगा, वो भी आ जाएगा, ये तरीक़ा है। अल्लाह पाक ने मेरे दोस्तों इसलिए इसकी बड़ी अहमियत बयान फरमाई है, हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी इसकी बड़ी अहमियत बयान फरमाई और उम्मत की बुनियादी जिम्मेदारियों में से इसको रखा गया है, इसीलिए इससे इसको इसमें कोताही को माफ़ नहीं किया जाता है। कोई भी कोताही माफ़ नहीं होती, लेकिन बहुत सी कोताहियाँ वो हैं कि आखिरत में पकड़ा जाएगा, लेकिन ये वो चीज़ है कि दुनिया में पकड़ा जाएगा। हदीस शरीफ में आता है कि जब उम्मत दीन की मेहनत नहीं करेगी तो उसको दुनिया में भी सज़ा दी जाएगी। पूरी उम्मत मुस्लिमा इस वक्त जो सज़ा का शिकार है, परेशान हाल है, बहस तमजमुई, उसके वजूहत में से असल वजह ये है। ये नहीं कि हमारे पास पॉलिटिक्स नहीं है, हमारे पास हुकूमतें नहीं हैं, हमारे पास नॉलेज नहीं है, हमारे पास पैसा नहीं है, ये नहीं, अपनी ज़िम्मेदारी से कोताही है। हुजूर के रास्ते से हटके चलना चाह रही है ये उम्मत, हुजूर के रास्ते से जब हटके चलती है ये उम्मत तो अल्लाह की मदद नहीं होती उसके साथ, चाहे तुम्हारे पास कितना ही पैसा हो, चाहे तुम्हारे पास कितना ही पेट्रोल निकले, चाहे तुम्हारे पास कितनी हुकूमतें हों, चाहे तुम्हारे पास कितना ही नॉलेज हो, कुछ भी हो, नहीं होता सब कुछ भी, अल्लाह की मदद हट जाती है। वो हुआ है हमारे साथ, इसलिए मेरे दोस्तों, खैर ये तो दुनिया है, अगर नहीं भी करें हम तो जूते खाते पीते मर ही जाएंगे एक दिन। इंडिविजुअल कुछ हासिल कर लिया, कुछ नहीं कर लिया, कुछ मुसीबत, कुछ परेशानी, कुछ जिल्लत, कुछ मकरूरियत, कुछ मगलूबियत, ये हो हुआ के टाइम तो निकल जाएगा, लेकिन असल तो आखिरत की ज़िंदगी। वैसे ये कोई समझदारी की बात नहीं है कि दुनिया के अंदर इस तरह की मुसीबत में आदमी रहे, इस वास्ते कि उसके उसका नतीजा ये होता है कि अपना दीन भी जाता है फिर इसके बाद, मजहब भी बर्बाद हो जाता है इसके बाद। और फिर दूसरे ये है कि इस दुनिया के अलावा जो आखिरत की हमेशा हमेशा की ज़िंदगी है वो नाकाम हो जाएगी, उसमें नुकसान हो जाएगा बहुत ज़्यादा। इसलिए हम और आप सब मिलकर ये तय करें कि हमें अल्लाह के दीन की मेहनत करनी है और उसके लिए सफ़र करना है। तब करेंगे मेरे दोस्तों इंशाअल्लाह। अल्लाह पाक मुझे और आपको सबको हिम्मत और तौफीक अता फरमाए। इरादे करो माशाअल्लाह। बरकत फरमाए। सारे साथियों से दरख्वास्त है कि अपने इरादों का इजहार करें, नाम लिखाएं और प्रोग्राम भी बनाएं, थोड़ा ज़्यादा जितना हो सकता है।